ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे कलमकार की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनके नाम से ही मतलब एक पूरा युग विक्टोरियन इंग्लैंड हमारी आंखों के सामने आ जाता है, चार्ल्स डिकेंस।
हाँ, चार्ल्स डिकेंस। उनका नाम सुनते ही वो लंदन की धुंधली गलियां, वो अजीब से मगर यादगार किरदार।
हाँ, और वो सामाजिक ऊंच नीच की कहानियां सब जहन में घूमने लगता है ना।
बेशक, चार्ल्स डिकेंस जिनका समय था 1812 से 1870, वो महज एक उपन्यासकार नहीं थे, वो अपने समय की आप कह सकते हैं नब्ज थे।
नब्ज थे, सही कहा।
उन्होंने कहानी कहने के अंदाज को बदला, उपन्यास को सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने दिया बल्कि उसे समाज का आईना बनाया, और कभी कभी तो मतलब समाज सुधार का एक हथियार भी।
हथियार भी। उनका असर इतना गहरा था कि आज भी हम डिकेंजियन माहौल की बात करते हैं।
सही, डिकेंजियन सुनते ही गरीबी, अन्याय, वो अजीबोगरीब माहौल याद आ जाता है।
हाँ, और यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हम डिकेंस के जीवन के उन पहलुओं को देखेंगे जिन्होंने उनकी लेखन को, आप कहिए, शक्ल दी। उस तूफानी दौर को समझेंगे जिसमें वो जी रहे थे,
जी,
और जानेंगे कि उनकी कहानियां आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। हमारे पास कुछ साहित्यिक जीवनियों और विश्लेषणों के अंश हैं जिनके जरिए हम डिकेंस की दुनिया की इस यात्रा पर निकलेंगे।
और देखिए, मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है बल्कि ये समझना है कि डिकेंस ने कैसे अपने अनुभवों को, अपने दौर की सच्चाइयों को कालजयी कथाओं में ढाला।
हाँ, ये समझना जरूरी है।
और कैसे उन्होंने लंदन शहर को ही एक जिंदा किरदार बना दिया। शुरू में वो बोज के नाम से लिखते थे।
अच्छा, बोज, ये क्यों?
हाँ, बोज, ये उनके छोटे भाई का एक मजाहिया तुतलाने वाला उपनाम था, तो वहीं से उन्होंने ये ले लिया। ये भी उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू है, यूं समझिए।
अरे वाह, तो चलिए उस दौर से शुरू करते हैं जिसमें डिकेंस का जन्म हुआ। 19वीं सदी का इंग्लैंड, मतलब औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी।
बिल्कुल,
शहर बेतहाशा बढ़ रहे थे, खासकर लंदन। एक तरफ नई तकनीक, नई दौलत, तो दूसरी तरफ वो भयानक गरीबी, भीड़भाड़, गंदगी। कैसा कैसा विरोधाभासी समय रहा होगा।
बहुत ज्यादा। देखिए, नेपोलियन से जो लंबी लड़ाइयां थी वो खत्म हुई थी, लेकिन समाज में गहरी उथल पुथल थी। 1832 का सुधार अधिनियम आया, कुछ लोगों को वोट का अधिकार मिला, पर वो जो सामाजिक खाई थी ना, वो बहुत गहरी थी।
और वो हंग्री 40s का जिक्र भी आता है।
हाँ, 1840 का दशक तो भूखा चालीसा ही कहलाया। बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक अशांति सब चरम पर था। इसी माहौल में डिकेंस की कहानियां वो पनपी।
और साहित्यिक दुनिया में क्या चल रहा था, वहां भी बदलाव आ रहे थे।
जी हाँ, पिछली पीढ़ी के जो स्वच्छंदतावादी मतलब रोमांटिक कवि थे, उनकी जगह अब यथार्थवादी उपन्यास ले रहे थे।
यथार्थवादी यानी रियलिस्ट।
हाँ, रियलिस्ट उपन्यास जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को दिखाएं, और डिकेंस इस विक्टोरियन यथार्थवाद के सबसे बड़े नाम बने।
अच्छा, और उस वक्त के बड़े विचारक भी होंगे, कार्लाइल, मिल।
बिल्कुल, थॉमस कार्लाइल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके विचारों का भी असर था समाज पर, खासकर मिल का जो उपयोगितावाद था, यूटिलिटेरियनिज्म।
हाँ हाँ, उपयोगितावाद, कि हर चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता से है।
सही, भावनाओं से नहीं। डिकेंस ने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में इसी सोच पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया था।
हार्ड टाइम्स, हाँ। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे तकनीकी बदलावों ने, जैसे प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे ने, डिकेंस की लोकप्रियता में मदद की।
अरे, बहुत मदद की। उनके उपन्यास किश्तों में छपते थे, सीरियलाइज्ड फॉर्म में।
सीरियलाइज्ड, जैसे आजकल वेब सीरीज आती हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही समझिए, हर महीने पाठक अगली किश्त का इंतजार करते थे। रेलवे ने इन किश्तों को दूर दराज तक पहुंचाना आसान बना दिया।
और सस्ती छपाई ने पाठक वर्ग भी बढ़ा दिया होगा।
बहुत ज्यादा, एक विशाल पाठक वर्ग तैयार हो गया। और डिकेंस ने इस फॉर्मेट का क्या खूब इस्तेमाल किया, वो कहानी को ऐसे रोमांचक मोड़ पर छोड़ते थे कि अगला अंक बिकना तय।
वही, जिसे हम आज क्लिफहैंगर कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, उसके वो माहिर थे। ये समझिए, उस जमाने का नेटफ्लिक्स सीरीज देखने जैसा अनुभव था लोगों के लिए।
वाह, अब अगर उनके निजी जीवन पर आए तो लगता है उनके उपन्यासों का ड्रामा कहीं ना कहीं उनके अपने जीवन के अनुभवों से ही निकला था।
पिता जॉन डिकेंस नेवल पे क्लर्क,
जी, मिलनसार थे, लेकिन पैसों के मामले में जरा लापरवाह।
इतने लापरवाह की?
इतने लापरवाह कि 1824 में, जब चार्ल्स सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता कर्ज न चुका पाने के कारण मार्शलसी नाम के कर्जदारों की जेल में डाल दिए गए।
12 साल की उम्र में और पूरा परिवार जेल चला गया?
हाँ, पूरा परिवार वहीं रहने चला गया, सिवाय चार्ल्स के।
और 12 साल के चार्ल्स को उनको स्कूल छोड़कर एक जूते की पॉलिश बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना पड़ा।
वॉरेन के ब्लैकिंग वेयरहाउस।
जी, सोचिए उस बच्चे के लिए ये कितना भयानक सदमा रहा होगा। अपमान, अकेलापन, बचपन छिन जाने का एहसास,
और ये अनुभव उनके साथ हमेशा रहा होगा
ताउम्र। वो शर्मिंदगी, वो बाल मजदूरी की पीड़ा उनके कई उपन्यासों में बार बार लौट कर आती है, चाहे वो ओलिवर ट्विस्ट का अनाथालय हो,
हाँ,
डेविड कॉपरफील्ड का बाल मजदूर बनना हो, या लिटिल डॉरेट में वो मार्शल सी जेल का माहौल। ये सब उनके अपने अनुभवों की ही छाया है।
उनकी स्कूली पढ़ाई तो फिर अधूरी ही रह गई।
हाँ, औपचारिक स्कूली शिक्षा संक्षिप्त और अनियमित थी, लेकिन पढ़ने का जुनून था उनमें।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने खुद पढ़ पढ़कर ही ज्ञान बटोरा। टोबियास स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, डैनियल डेफो, इन सबको पढ़ा।
और फिर बाद में लॉ क्लर्क बने, फिर पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग।
जी, लॉ क्लर्क बने, फिर संसदीय रिपोर्टर, शॉर्ट हैंड सीखी और कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था को बहुत करीब से देखा। पत्रकारिता भी की, वहीं से उनके शुरुआती लेखन स्केचेस बाय बोज की शुरुआत हुई।
स्केचेस बाय बोज,
और यहीं से उनके साहित्यिक सफर का, कह लीजिए, आगाज हुआ। डिकन्स ने अंग्रेजी उपन्यास का कैनवस बहुत बड़ा कर दिया।
कैसे, मतलब क्या अलग किया उन्होंने?
वो कहानियों को अमीरों के ड्राइंग रूम से निकालकर लंदन की अंधेरी गलियों, वर्कहाउसों, जेलों, कारखानों तक ले गए, आम लोगों की जिंदगी दिखाई।
और उनके किरदार कमाल के, एबनेजर स्क्रूज, फैगिन, मिस हैविशम, उराया हीप, मिस्टर मिकोबॉ,
हाँ,
कितने ही ऐसे नाम हैं जो आज भी लोगों को याद हैं।
बिल्कुल।
कुछ आलोचक कहते हैं कि वो कैरिकेचर ज्यादा थे।
हाँ, कहते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिंदा दिली थी, एक मनोवैज्ञानिक गहराई भी थी। वो सिर्फ पात्र नहीं थे, वो अपने समय के समाज के प्रतीक बन गए।
प्रतीक बन गए, सही कहा।
बिल्कुल। वो सिर्फ कहानियां नहीं कह रहे थे, वो अपने किरदारों और कथानकों के जरिए समाज पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्हें सामाजिक समस्या उपन्यास का अगुआ माना जाता है।
सामाजिक समस्या उपन्यास,
सोशल प्रॉब्लम नॉवल, जिसे उन्होंने कानून की खामियां दिखाई ब्लीक हाउस में, शिक्षा व्यवस्था की क्रूरता निकोलस निकलबी में, औद्योगिक समाज की अमानवीयता हार्ड टाइम्स में, और गरीबी का वो जो दुष्चक्र है वो ओलिवर ट्विस्ट में बहुत बेबाकी से दिखाया।
और उनकी शैली भी बड़ी अनोखी थी, वो माहौल बनाने में माहिर थे, है ना? हाँ, जैसे लंदन का कोहरा।
हाँ हाँ, लंदन का कोहरा, टेम्स नदी की गंदगी, ये सब उनके उपन्यासों में सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं होते थे।
नहीं
नहीं, ये कहानी के प्रतीक बन जाते थे। उनकी भाषा में खास लय थी, एक प्रवाह था, शायद उनके जो सार्वजनिक पठन होते थे।
हाँ, पब्लिक रीडिंग्स, सुना है वो बहुत लोकप्रिय थे।
और एक गजब के लोकप्रिय। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो अभिनय करते थे, अपने किरदारों को आवाज देते थे, लोग उन्हें सुनने के लिए दीवाने थे। ब्रिटेन और अमेरिका में उन्हें समझिए किसी रॉकस्टार जैसी शोहरत मिली।
रॉकस्टार जैसी?
वाओ।
हाँ।
हालांकि इन दौरों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला बाद में।
अच्छा, अब उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें। शुरुआत हुई द पिकविक पेपर्स से।
जी, द पिकविक पेपर्स 1836-37, वो उनकी पहली बड़ी सफलता थी। एक मजाहिया उपन्यास था जिसने वो धारावाहिक फॉर्मेट स्थापित किया।
लेकिन फिर आया ओलिवर ट्विस्ट जिसने सबको चौंका दिया।
हाँ, ओलिवर ट्विस्ट 1837-39 बहुत अलग था। उसमें जो नया पुअर लॉ था उसके तहत बने वर्कहाउसों की कठोर सच्चाई, लंदन का अपराध जगत, बाल शोषण, इसका बेहद यथार्थवादी चित्रण था। वो जो ओलिवर का सवाल है, प्लीज सर, आई वांट सम मोर,
हाँ, मुझे थोड़ा और चाहिए,
वो मासूम सा सवाल उस पूरी व्यवस्था पर एक करारी चोट थी। उसने लोगों को झकझोर दिया था।
फिर डेविड कॉपरफील्ड 1849-50, इसे वो खुद अपना पसंदीदा बच्चा कहते थे।
जी हाँ, ये काफी हद तक उनकी अपनी कहानी है, एक लेखक बनने का सफर, बचपन के दुख, और इसमें मिस्टर मिकोबर जैसे यादगार किरदार हैं जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, शायद उनके अपने पिता की तरह। इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई ज्यादा है।
और उनका कलात्मक शिखर किसे माना जाता है?
वो माना जाता है ब्लीक हाउस 1852-53 को। ये इंग्लैंड की जो बेहद पेचीदा और धीमी कानूनी प्रक्रिया थी, कोर्ट ऑफ चांसरी, उस पर एक जबरदस्त व्यंग है।
अच्छा।
कहानी दो अलग अलग आवाजों में कही गई है, और पूरे उपन्यास पर लंदन का घना कोहरा छाया रहता है, जो कानूनी धुंधलके और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक है। ये वाकई एक मास्टरपीस है।
मास्टरपीस। और ए टेल ऑफ टू सिटीज 1859, वो भी तो बहुत मशहूर है, फ्रांसीसी क्रांति वाली।
हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक उपन्यास है वो, उसकी शुरुआत ही अमर है। ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था,
हाँ,
ये इतिहास के विरोधाभासों और निजी त्याग की कहानी है।
और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1860-61 पिप की कहानी।
हाँ, पिप एक आम लड़का जिसे अचानक दौलत मिलती है और वो जेंटलमैन बनने के सपने देखता है। ये वर्ग, महत्वाकांक्षा, अपराध बोध, प्रेम, इन सब की बहुत मार्मिक कहानी है।
और मिस हैविशम, ओ मिस हैविशम, वो तो भूलना मुश्किल है, शादी के जोड़े में बूढ़ी होती हुई।
वही क्या किरदार गढ़ा है।
तो इतने सारे महत्वपूर्ण काम उस जमाने में आजकल जैसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार तो नहीं होते थे शायद।
नहीं, वैसे औपचारिक पुरस्कार कम थे, लेकिन उन्हें सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ा सम्मान तो उनके करोड़ों पाठक थे।
करोड़ों पाठक?
हाँ, मजदूर वर्ग से लेकर रानी विक्टोरिया तक। रानी विक्टोरिया खुद उनकी प्रशंसक थीं। वो एक एक राष्ट्रीय हस्ती बन गए थे। सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय मायने रखती थी।
उन्हें कोई उपाधि वगैरह मिली जैसे लॉर्ड?
नहीं, पियरेज तो नहीं मिली, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया जाना।
पोएट्स कॉर्नर, जहां शेक्सपियर और चौसर हैं।
जी हाँ, उन दिग्गजों के पास जगह मिलना ये अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान था।
उनकी विरासत की बात करें तो क्या उनकी लोकप्रियता हमेशा एक जैसी रही? मैंने कहीं पढ़ा था कि 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ आधुनिकतावादी लेखकों ने उनकी आलोचना भी की थी।
हाँ, ये सच है। वर्जीनिया वुल्फ, डीएच लॉरेंस जैसे कुछ लेखकों को उनका लेखन कुछ ज्यादा भावुक, मेलोड्रामेटिक लगता था।
अच्छा, क्यों?
उन्हें लगता था कि डिकिन्स के पात्र मनोवैज्ञानिक रूप से उतने जटिल नहीं हैं। तो हाँ, कुछ समय के लिए उनकी प्रतिष्ठा में थोड़ी गिरावट आई थी,
लेकिन फिर उनका पुनर्मूल्यांकन हुआ, उन्हें दोबारा महत्व दिया गया।
बिल्कुल, 20वीं सदी के मध्य में एडमंड विल्सन जैसे आलोचकों ने दिखाया कि डिकिन्स की कला असल में कितनी गहरी और जटिल है, उनके प्रतीकों का संसार कितना समृद्ध है और उनकी सामाजिक आलोचना कितनी पहनी है। आज उन्हें फिर से अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिना जाता है।
और उनका असर तो दुनिया भर के लेखकों पे पड़ा होगा।
अरे, बहुत गहरा असर। रूस में दोस्तोयेवस्की और टॉलस्टॉय से लेकर जॉर्ज ऑरवेल तक, सब पर उनका प्रभाव दिखता है।
और ये जो शब्द है डिकेंसियन, ये तो आज भी इस्तेमाल होता है जब हमें गरीबी, अन्याय या किसी अजीब से माहौल का जिक्र करना हो।
सही कहा, ये दिखाता है कि उनकी दुनिया ने कितनी गहरी छाप छोड़ी है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि वो आज भी प्रासंगिक है?
मैं कहूंगा बिल्कुल, उनकी प्रासंगिकता आज भी इसीलिए है क्योंकि वो जिन मुद्दों से जूझ रहे थे, अमीर गरीब की वो खाई, संस्थाओं की बेरहमी, व्यक्तिगत नैतिकता का संघर्ष, लालच का नतीजा सहानुभूति की ताकत, वो मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, भले ही उनका रूप थोड़ा बदल गया हो।
उनके कुछ मशहूर संवादों को याद करें। ए टेल ऑफ टू सिटीज की शुरुआत तो हमने की, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स।
हाँ, और ऑलिवर ट्विस्ट का वो प्लीज फॉर आई वांट सम मोर,
वो तो कालजयी है।
और क्रिसमस कैरल का एबेनेजर स्क्रूज, जब वो बदल जाता है तो कहता है, मैं क्रिसमस का सम्मान अपने दिल में रखूंगा और इसे पूरे साल बनाए रखने की कोशिश करूंगा। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीऊंगा। ये बदलाव और उम्मीद की ताकत दिखाता है।
हाँ, और उसी कहानी में टिनी टिम का वो छोटा सा वाक्य, गॉड ब्लेस अस एवरीवन,
ईश्वर हम सब पर कृपा करें। बिल्कुल, ये डिकिन्स की मानवतावादी नजरिए का निचोड़ है।
और ए टेल ऑफ टू सिटीज के अंत में सिडनी कार्टन का वो कथन, जब वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देता है,
इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, या कहीं बेहतर काम है जो मैं कर रहा हूँ उससे जो मैंने कभी किया है। वो आत्म बलिदान और मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली क्षण है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और पहलू भी हैं शायद जो कम जाने जाते हैं। उपनाम बोज तो आपने बताया।
हाँ, जैसे उनकी पत्नी कैथरीन होगार्थ, जिनसे उनके 10 बच्चे थे, उनसे उनका अलगाव हुआ था, जो काफी सार्वजनिक और उस जमाने के हिसाब से स्कैंडल जैसा था।
अच्छा, और वो अभिनेत्री एलन टर्निन के साथ उनके संबंधों की भी बातें होती हैं।
जी, एलन टर्निन के साथ उनके गुप्त संबंध की भी बातें हैं जो उनकी मृत्यु के बाद ज्यादा सामने आई। उनका निजी जीवन भी काफी उथल पुथल भरा रहा।
और वो उनके आखिरी उपन्यास का क्या मामला है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूड?
हाँ, वो अधूरा रह गया, वो उसे लिखते लिखते ही गुजर गए, और आज तक ये रहस्य है कि कहानी का अंत क्या होता है।
सच में? तो किसी को नहीं पता?
नहीं, पाठक सदियों से इस पर अटकले लगाते आए हैं, अपने अपने अंत गढ़ते आए हैं, लेकिन असली अंत तो डिकन्स के साथ ही चला गया।
अरे वाह, और उनकी कहानियों के रूपांतरण, अडाप्टेशंस, वो तो अनगिनत हुए होंगे।
बहुत, फिल्मों में, टीवी पर, स्टेज पर। डेविड लीन की वो क्लासिक फिल्में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑलिवर ट्विस्ट, बीबीसी की मिनी सीरीज ऑलिवर जैसा म्यूजिकल, ये सब डिकन्स को नई पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे।
तो अगर कोई आज डिकेंस को पढ़ना शुरू करना चाहे तो कहाँ से करें? कोई आसान शुरुआत?
मेरे ख्याल से शुरुआत के लिए एक क्रिसमस कैरल सबसे अच्छी है। छोटी है, कहानी मज़ेदार भी है और मार्मिक भी, और डिकेंस की शैली और उनके संदेश का अच्छा परिचय देती है।
और अगर कोई थोड़ा और गहराई में जाना चाहे
तो फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ सकते हैं। कलात्मक रूप से बहुत सधा हुआ उपन्यास है और पिप की कहानी बहुत व्यक्तिगत लगती है। या फिर डेविड कॉपरफील्ड,
वो तो काफी लंबा है शायद।
हाँ, लंबा जरूर है पर बहुत समृद्ध है और काफी हद तक उनकी अपनी कहानी कहता है, तो जुड़ाव महसूस होता है।
और सबसे महत्वाकांक्षी पाठकों के लिए जो एक चुनौती चाहते हो,
उनके लिए तो मैं कहूंगा ब्लीक हाउस। ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन डिकेंस की कला और उनकी सामाजिक आलोचना की ऊंचाई देखनी हो तो इसे पढ़ना चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। डिकेंस ने अपने समय के समाज की जिन बुराइयों पर इतनी शिद्दत से लिखा, गरीबी, अन्याय, व्यवस्था की वो जो उदासीनता थी, क्या वो समस्याएं आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं या बस उनका रूप बदल गया है?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इसका जवाब है कि नहीं, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। रूप जरूर बदला है, लेकिन वो मुद्दे आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। डिकेंस हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा सहानुभूति से और हाँ, ज्यादा आलोचनात्मक नज़र से देखने की प्रेरणा देते हैं।
सही।
और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या आज के कहानीकारों, कलाकारों की भी वही जिम्मेदारी है जो डिकेंस ने महसूस की, समाज को उसका असली चेहरा दिखाने की और बदलाव की उम्मीद जगाने की। उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं है, वो इस सवाल में भी जिंदा है मेरे ख्याल से।
बिल्कुल सही कहा। चार्ल्स डिकेंस की इस जटिल और आकर्षक दुनिया की यात्रा वाकई ज्ञानवर्धक रही। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस चर्चा में आनंद आया होगा।
क्लोजिंग नरेशन प्रोवाइडेड। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।